आज है 6 मई दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। संसद में आज भी छाया रहा अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का मुद्दा, तो कांग्रेस ने निकाला लोकतंत्र बचाओ मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में कांग्रेस को दिया बहुमत साबित करने का मौका।
वो लगातार झपट्टा मार स्टाइल में विधायकों को खरीदने आदि की जो कोशिश कर रहे थे, इससे उत्तराखंड को 10 तारीख को निजात मिल जाए।
और विवेचना में जानेंगे इंदिरा गांधी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में उनके निजी चिकित्सक की नजर से।
दो आदमी होते, एक तो राम कुमारी और एक काली प्रसाद, ये आए थे उनके साथ आनंद भवन इलाहाबाद में थे। उनसे बात करने कभी कभी अपने अवसर में बात करते हैं। राम कुमार डॉक्टर साहब ने बताया दे।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लोकसभा में कहा कि पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी और गौतम खेतान छोटे नाम हैं, जिन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार की बहती गंगा में हाथ धोए हैं, और सरकार ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये नदी बहकर कहां जा रही है। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा के अंदर और बाहर भाजपा को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली में जंतर मंतर पर लोकतंत्र बचाओ रैली में हिस्सा लिया और गिरफ्तारी भी दी। जंतर मंतर पर सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार RSS के इशारे पर चल रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में पिछले साल फरवरी में लाए गए गोवंश हत्या प्रतिबंध कानून के कुछ हिस्सों को खारिज कर दिया है। हालांकि गोवंश हत्या पर रोक जारी रखी गई है, लेकिन अन्य राज्यों से बीफ के आयात पर रोक हटा दी गई है। इसके अलावा अदालत ने बीफ खाने और अपने पास बीफ रखने के से भी प्रतिबंध हटा दिया है। गोवंश हत्या प्रतिबंध कानून के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया था। जर्मनी के कोलोन शहर में नए साल की शाम को महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। 26 साल के अल्जीरियाई शख्स के खिलाफ यौन शोषण और चोरी के मामले में मुकदमा शुरू कर दिया गया है। कोलोन के मुख्य स्टेशन के भीतर और बाहर कई पुरुषों के महिलाओं को घेरने के मामले में 1000 शिकायतें दर्ज की गई थी। इस मामले में जांच अधीक्षक थॉमस स्कटलर ने ये कहा। कोलोन में नए साल की रात यौन शोषण के मामले में अल्जीरियाई मूल के एक शख्स पर मुकदमा शुरू किया गया है। इस हफ्ते जांच चलती रहेगी। हमने 159 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें 2/3 लोग अल्जीरिया और मोरक्को के हैं। इनमें से 90% शरणार्थी हैं, जो अगस्त से दिसंबर 2015 के बीच जर्मनी आए थे। ये लोग नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया शरणार्थी शिविर में रहते हैं। ये थे थॉमस स्कटलर के शब्द। कोलोन छेड़छाड़ मामले के बाद प्रवासियों को लेकर जर्मनी में गुस्सा बढ़ गया है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि तालिबान के नियंत्रण वाली एक अस्थायी जेल से 60 लोगों को आजाद करवाया गया है। हेलमंड प्रांत के नौजाद जिले में हेलीकॉप्टर की मदद से ये ऑपरेशन किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि छुड़ाए गए लोग कौन है। इससे पहले भी अफगानिस्तानी सुरक्षा बलों ने 50 लोगों को रिहा करवाया था। तालिबान का दबदबा अब उत्तरी अफगानिस्तान में ही रह गया है। उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी करीब 36 साल बाद पहली बार कांग्रेस का आयोजन कर रही है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो BBCHindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। संसद में आज भी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे का मुद्दा गूंजा। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक लोकतंत्र बचाओ मार्च का आयोजन किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई पार्टी सदस्यों ने भाग लिया। ये लोग पुलिस अवरोध को तोड़ते हुए आगे बढ़े और गिरफ्तारी दी। इधर संसद में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सरकार उन लोगों का पता लगाने में कामयाब होगी जिन्होंने 3600 करोड़ रुपये की अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में घोटाला किया है। मनोहर पर्रिकर के भाषण के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। पूरे ब्यौरे के साथ जुबैर अहमद।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील पर आज कांग्रेस पार्टी ने काफी आक्रामक रुख अपनाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस की पूरी ए टीम आज सड़क पर उतर आई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता जंतर मंतर से संसद तक लोकतंत्र बचाओ मार्च में शामिल हुए, पुलिस की घेराबंदी तोड़ी और संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में अपनी गिरफ्तारी दी। सोनिया गांधी ने जंतर मंतर पर एक जोरदार भाषण दिया और कहा कि उनकी पार्टी अपने सिद्धांतों पर डटी रहेगी।
अगर कुछ लोग समझते हैं कि कांग्रेस को लोकतंत्र की रक्षा के लिए उसके बुनियादी रास्ते से हटाया जाना आसान है तो उन्हें मालूम ही नहीं कि कांग्रेस जन किस मिट्टी के बने हैं।
सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार नागपुर से आदेश लेती है। उनका इशारा आरएसएस की तरफ था जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि देश में हर जगह सूखा पड़ा है लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश है।
देश का 40% सूखा है, हर रोज 50 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लातूर विदर्भा बुंदेलखंड जल रहे हैं और मोदी जी को इसके बारे में कुछ कहना नहीं।
उधर लोकसभा में भी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील पर चर्चा के दौरान कांग्रेस का आक्रमण जारी रहा। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड के खिलाफ कार्रवाई उनकी सरकार ने शुरू की थी, सौदे को स्थगित भी उन्हीं की सरकार ने किया था और कंपनी से पैसे भी वसूले थे। उन्होंने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से पूछा कि आपकी सरकार ने पिछले 2 सालों में क्या कदम उठाए हैं।
आज हमने अपना बैलेंस शीट आपके सामने रखा है, अब हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनकी 2 साल की बैलेंस शीट क्या है। 2 साल में आप तो यहाँ बैठकर चीख चीख के चिल्ला रहे हो, आप देश की जनता को बताओ कि 2 साल में आपने करके क्या दिखाया है, ये देश की जनता जानना चाहती है।
मनोहर पर्रिकर ने कांग्रेस के दावों पर चुटकियां लेते हुए कहा कि पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और इस घोटाले में अपनी सरकार के जरिए अब तक उठाए कदमों को यूं गिनाया
कि एक केस में मतलब है पीओ 4/15 मीडिया एक्जिम्स प्राइवेट लिमिटेड द कंपनी बीइंग रन बाय क्रिश्चियन मिशेल इन द नेम ऑफ आर के नंदा, इसके खिलाफ केस 19/3/2015 में लगाया।
भारतीय जनता पार्टी का रुख भी काफी आक्रामक था। लोकसभा में पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार के पूरे काल में कांग्रेस ने पूरे सिस्टम को भ्रष्ट करने की कोशिश की। कांग्रेस और कुछ दूसरी पार्टियों के सांसदों ने घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के काम को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जारी रखने की मांग की और जब इस मांग को मंजूर नहीं किया गया तो कांग्रेसी सांसद वॉकआउट कर गए। याद रहे कि बुधवार को इस मुद्दे पर राज्यसभा में भी धुआंधार बहस हुई थी। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
उत्तराखंड में पिछले करीब 1.5 महीने से जारी राजनीतिक संकट पर अब कुछ विराम लगने की संभावना बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को राज्य विधानसभा में फ्लोर टेस्ट यानी शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया है। शक्ति परीक्षण के दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं माना जाएगा। कांग्रेस खेमा जहां इस बात से खुश है कि हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी शक्ति परीक्षण का आदेश दिया है, वहीं बीजेपी खेमे में निराशा है कि इतनी दूर तक ये मामला खिंच गया लेकिन हाथ कुछ आता नजर नहीं दिख रहा। उधर बागियों ने एक बार फिर कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा है। देहरादून से शिव जोशी की ये रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उत्तराखंड की विधानसभा में 10 मई को होने वाले शक्ति परीक्षण की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। उस दौरान कोर्ट की ओर से पर्यवेक्षक भी नियुक्त रहेंगे। पक्ष और विपक्ष के विधायक अलग अलग बैठेंगे और समर्थन या विरोध में हाथ खड़ा करेंगे। वोटिंग के नतीजों को एक सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया जाएगा और फिर वही नतीजे घोषित करेगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने आज सुबह कोर्ट को बता दिया था कि वो फ्लोर टेस्ट पर सहमत है। सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूछा था कि वो शक्ति परीक्षण को लेकर क्या सोचती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रफुल्ल हैं। कोर्ट के आदेश को सुनहरा मौका बताते हुए हरीश ने अपने बहुमत का दावा किया और कहा कि उनके विधायक संकट की घड़ी में उनके साथ थे, हैं और रहेंगे।
विधायक उठाऊ जो गिद्ध उत्तराखंड के राजनीतिक मंडल पर मडरा रहे थे, एक जा रहा था दूसरा आ रहा था, जिनका कोई लेना देना उत्तराखंड से नहीं है, वो लगातार झपट्टा मार स्टाइल में विधायकों को खरीदने आदि की जो कोशिश कर रहे थे, इससे उत्तराखंड को 10 तारीख को निजात मिल जाए।
इस बीच बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी प्रवक्ता अनिल बलूनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर पैदा नए हालात पर पार्टी की रणनीति तैयार करने के लिए देहरादून में हैं। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में राज्य नेताओं के साथ इन नेताओं की बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा,
उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है वो सिरोधारी है, जब भी फ्लोर टेस्ट होगा भारतीय जनता पार्टी नंबर एक पर ही निकलेगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां एक बार फिर कांग्रेस की बाछें खिल गई हैं, वहीं बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का बागी खेमा मायूस है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने जब राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था तो उसने 9 बागियों को भी वोटिंग का अधिकार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में बागियों को बाजी हाथ से खिसकती दिख रही है। अब रही सही उम्मीद उन्हें सीबीआई पर है, जो हरीश रावत के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन की जांच कर रही है और जिसके लिए उन्हें 9 मई को दिल्ली भी तलब किया गया है। सुनिए बागी नेता सुबोध उनियाल को।
अब हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं इस पूरे मामले के लिए। अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई व्यक्ति है तो राहुल गांधी, पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व सब कुछ जानने के बावजूद जब आंख बूंदे रहे और मुख्यमंत्री तानाशाह बनकर राज्य को लूटने में लग जाएं, तो उसमें हम लोगों का फर्ज था कि राजहित में हम लोग लगाम का काम करें और हमने वो लगाम लगाने का काम किया।
उत्तराखंड की निलंबित विधानसभा का गणित देखें तो कांग्रेस के पक्ष में 9 बागियों के जाने के बाद 33 विधायक रह गए हैं और बीजेपी के पास 27 हैं। कांग्रेस के पक्ष में जो 33 विधायक हैं उनमें 27 पार्टी के ही हैं, 3 निर्दलीय हैं, 2 बीएसपी और 1 यूकेडी का विधायक है। इसके अलावा बीजेपी के निलंबित विधायक भीमलाल आर्य की सदस्यता को लेकर बीजेपी की याचिका को स्पीकर खारिज कर चुके हैं। इसका अर्थ ये है कि उन्हें मतदान में भाग लेने का अवसर मिलेगा और वो पहले से कांग्रेसी खेमे को अपना समर्थन जता चुके हैं। उनके वोट से कांग्रेस के पास 34 का आंकड़ा हो जाता है। वैसे एक नामांकित विधायक और एक वोट स्पीकर का भी मिला दें तो कांग्रेस के पास 36 की संख्या सदन के भीतर है। शिव जोशी, बीबीसी, देहरादून।
तो 10 मई को हरीश रावत को करना होगा बहुमत साबित। मैंने अब से थोड़ी देर पहले फोन कर मुख्यमंत्री हरीश रावत से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति परीक्षण का मौका तो दिया है, लेकिन क्या उनके पास पर्याप्त विधायक हैं?
पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि इससे कम से कम एक अनिश्चितता, एक अनसर्टिनिटी जो यहाँ की पूरे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ में पैदा हो गई थी, वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है वो खत्म होगा और 10 तारीख को ये निर्धारित हो जाएगा कि किसके साथ बहुमत है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिन लोगों ने एक सैद्धांतिक पक्ष को लेते हुए 18 तारीख से लगातार हमारा साथ दिया है, वो आज भी हमारा साथ देंगे और उत्तराखंड के गौरव की रक्षा करेंगे।
ये जो 70 विधानसभा सदस्य है उसके लिए 31 विधायकों की जरूरत पड़ेगी आपको बहुमत साबित करने के लिए। कहाँ से लाएंगे ये विधायक, क्योंकि 9 तो बागी विधायक हैं और उसके ऊपर उत्तराखंड हाईकोर्ट फैसला कल करेगी।
हमारे साथ 34 लोग हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे साथ ज्यादा हैं, हमने 34 ही बताए हैं, 34 लोग हैं हमारे पास।
जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने खरीद फरोख्त की थी विधायकों की, जो स्टिंग ऑपरेशन दावा किया जा रहा है कि सामने आया है और उसमें आपका नाम लिया जा रहा है,
स्टिंग ऑपरेशन में जो कॉन्स्पिरेसी करने वाले हैं उसको तो लोग जो है हीरो बना रहे हैं और जो व्यक्ति शिकार है उसका उसको जो है विलेन के तरीके से पेश किया जा रहा है। सत्यता यह है कि उस स्टिंग में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि मुझे विधायक चाहिए, मैं विधायक खरीदता हूँ, कोई लेन देन, कोई भाव तौल किसी से नहीं किया गया है। जो तथाकथित षड्यंत्र करता है वो खुद ही बोली लगा रहा, कह रहा मेरे पास विधायक हैं, मैं बेचना चाहता हूँ, और खुद ही उनकी बोली लगा रहा है और खुद ही पैसे का भी बंदोबस्त कर रहा है। तो जो व्यक्ति खुद ही ये सब कर रहा है और दूसरे के मुंह में शब्दों को डालने की कोशिश कर रहा है, तो जो डाल रहा है वो दोषी नहीं है और दोषी वो है जिसके मुंह में डाला जा रहा है। तो ये अलग तरीके का एक सिद्धांत, पता नहीं कहाँ से मीडिया ने इसको ग्रहण कर लिया है। सत्यता यह है कि वो स्टिंग एक फरेब है, एक जानबूझ करके एक साजिशन किया गया है और वो स्टिंग कुछ दिखा रहा है। तो एक बात दिखा रहा है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करने का एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी, एक ऑपरेशन प्रारंभ हुआ जिसमें भाजपा के नेता और कुछ जो है रेवल विधायक लोग सम्मिलित थे और लंबे समय से काम कर रहे थे, जो अपने आप में इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करना, कॉन्स्पिरेसी करना, इट इज क्राइम अगेंस्ट स्टेट।
और ये जो आप दावा कर रहे हैं 34 विधायकों का, ये आप कहाँ से लाएंगे?
मैंने कहा ना कांग्रेस के विधायक हैं, पीडीएफ हमारा साथ दे रहा है, 6 विधायक उनके हैं और बाकी हमारे विधायक हैं। ये सवाल तो आपको भाजपा से पूछना चाहिए कि आप कहाँ से लाएंगे विधायक, उनके 28 और सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो कहीं से खरीद करके लाएंगे।
तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को पूर्ण विश्वास है कि वे बहुमत साबित कर लेंगे।
बीबीसी इंडिया बोल। कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ आंदोलन की राजनीति क्या है? दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह ने सड़क पर उतरकर गिरफ्तारी दी, तो क्या भारत में लोकतंत्र वाकई खतरे में है या विपक्ष में रहकर कांग्रेस बेचैन हो रही है? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर होगी बातचीत। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 7 मई को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब समय है विवेचना का। इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन पर यूं तो बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन बहुत कम लेखकों ने उनकी शख्सियत को टटोलने की कोशिश की है। ये काम किया है 18 वर्षों तक इंदिरा गांधी के निजी चिकित्सक रहे डॉक्टर केपी माथुर ने हाल ही में प्रकाशित अपनी पुस्तक द अनसीन इंदिरा गांधी थ्रू हर फिजिशियन आईज। मैं इस किताब में उन्होंने इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं से पाठकों को अवगत कराया है जिन पर पहले किसी की नज़र नहीं गई है। आज की विवेचना में रेहान फजल नज़र डाल रहे हैं इस बहुचर्चित किताब पर।
जब इंदिरा गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला तो वो सिर्फ 48 साल की थी। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, किसी तरह की बीमारी नहीं थी उनको, इसलिए शुरू के महीनों में उन्होंने अपने लिए कोई डॉक्टर नहीं रखा। लेकिन जून 1966 में एक हवाई यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद ये सोचा जाने लगा कि प्रधानमंत्री का निजी डॉक्टर होना चाहिए। और उस समय सफदरजंग अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर केपी माथुर को तलब किया गया
कि एक दफा वो दौरे से लौट के आ नहीं थी तो जहाज जो थी वो कुछ ऐसी हवा में फंसा, अंग्रेजी में तो कहते गॉट कॉट इन द इल विंड्स, लेकिन खैर वो ऐसे फंसा के उसका वो एट लॉस इट्स बैलेंस, कोई गिरा कोई इधर गिरा, कि केबिन के अंदर भी लोग गिरे पड़े तो एक आध के चोट भी लगी, एक आध के खून भी होने लगा। तब ये महसूस किया गया कि भाई अगर कोई डॉक्टर होता तो कम अज़ कम फर्स्ट एड तो दे देता। जब वो फ़ौरन से लौट कर आई हैं उन्होंने अपने प्राइवेट सेकेंडरी मिस्टर सेशन को ये कहा कि भाई किसी डॉक्टर की तलाश करो, और उस वक्त कर्नल अय्यर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट थे सफदरजंग हॉस्पिटल की। अब इतवाक की बात देखिए, कर्नल अय्यर के पास जब टेलीफोन पहुँचता है तो उस वक्त उनके जो नंबर टू थे वो उनके पास बैठे हुए थे। कर्नल अय्यर ने फ़ौरन कहा कि व्हाट अबाउट माथुर। मिश्रा साहब जो उनके वो थे वो कहने लगे साहब माथुर इज़ ए वेरी गुड डॉक्टर, आफ्टर ऑल जॉब रिक्वायरमेंट क्या है। तो कर्नल अय्यर ने कहा भी पहले तो ये कि ही शुड कीप हिज माउथ शट, बकवास ना करने वाला हो। तीसरा जो सवाल उठा ही शुड बी वेल मैनर्ड। अब मिश्रा साहब बड़े हंसे, उन्होंने कहा सर प्राइम मिनिस्टर के सामने कौन ऐसा होगा जो वेल मैनर्ड ना हो। उन्होंने कहा नो नो मिश्रा, वेल मैनर्ड नॉट लाइक मी, क्योंकि वो इतफाक से केरलाइट थे और वो तो हिंदी हिंदुस्तानी बोलना भी नहीं जानते थे, बट वेल मैनर्ड इन्हें नवाबी लखनऊ स्टाइल, आइए जनाब आइए तशरीफ़ रखिए, कुछ खिदमत का मौका दीजिए, हम तो खिदमतगार हैं, और फरमाइए आपको क्या तकलीफ़ हुई वगैरह वगैरह। दोनों खूब हंसे इस बात के ऊपर, लेकिन ये समझिए कि हम तीनों तरह उसमें पास हो गए, और जब हम पास हो गए तो हमारा नाम स्टेशन साहब के पास पहुंचा दिया गया।
इसके बाद डॉक्टर माथुर का इंदिरा गांधी से मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो जीवन पर्यंत रहा। इस दौरान उन्हें इंदिरा गांधी के मानवीय पक्ष को नजदीक से देखने का मौका मिला।
हर एक के लिए उनके दिल में जगह थी, हर एक से बहुत ही तन्नी से बात करती थी, नौकरों से तक से कोई जोर से नहीं बोला जाता था, सबके लिए एक लिहाज था। अब लेकिन दो आदमी जो थे, एक तो राम कुमारी और एक काली प्रसाद, ये आए थे उनके साथ आनंद भवन इलाहाबाद में थे, तो उनसे उनकी ज्यादा इंतियत थी, उनसे बात करने कभी कभी अपने अवधि में बात करते, अरे राम कुमार अरे तने डॉक्टर साहब ने बतलाई दे, अरे कहे राम कुमार कहे बतलाई दे, अरे बहन जी कही। अच्छा पीएम को भैया जी कहती थी, भैया जी ना बहन जी कहती थी ना मैडम कहती, और भैया जी कहीं।
जब भी इंदिरा गांधी भारत में किसी दौरे पर जाती थी तो उन्हें हवाई जहाज में वड़ा चटनी सैंडविच और कॉफी सर्व की जाती थी, जिसे कैनॉट प्लेस के इंडियन कॉफी हाउस से मंगवाया जाता था। इंदिरा गांधी सादा खाना खाती थी और ज्यादातर वेजिटेरियन।
ऐसा है कि बैठती तो लेती नहीं थी, बल्कि ये कही कि उस घर में मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जवाहरलाल जी से लेकर के कोई भी बैठती नहीं लेता। 8:30 बजे करीब ब्रेकफास्ट होता था उनका, और
बहुत ही सूक्ष्म सा, आपने एक या दो टोस्ट, थोड़ा सा उनपे मक्खन लगा होता था, थोड़ा सा नाम के वास्ते एक हाफ बॉइल्ड एग, और जो मौसम के फल हो ज्यादातर सेब हुआ करता था, और एक मिल्की कॉफी, वो मिल्क उतरा थी उसमें कॉफी, ये उनका ब्रेकफास्ट था। वो वेजिटेरियन ज्यादा थी, वो ज्यादा नॉन वेज बहुत पसंद नहीं करती थी, लेकिन हाँ घर में भी बनता था खाती थी, और कभी कभी बाहर से भी आता था, और खासकर रमजान के दिनों में मुस्लिम दोस्त जो थे वो अपने घर से वो भेज दिया करते थे, सेमई भेजी, बिरयानी भेजी, सीख कबाब भेजिए वगैरह वगैरह। उनका कुछ ऐसा था कि अगर मैं वहाँ इतफाक से हूँ घर में तो डिनर की टेबल पर बुला लीजिए, बैठ गई, बैठ के उन्होंने कभी कुछ खाओगे ये खिलाओ, डॉक्टर को वो खिलाओ, कोई याद आई कभी रेफ्रिजरेटर में फलानी मिठाई रखी हुई है बनारस से वो लाए थे वो ले आओ। एक उनके किचन में जो चीज बनती थी वो भिंडी, कच्ची भिंडी को लेकर के जरा सा बेसन में लपेट के और थोड़ा खास मसाला होता था वो बनाते थे सारा, अब वो फ्राई हो जाती है जरा कुरकुरी हो जाती है, मुझे वो बहुत पसंद थी। एक दिन देखा कुरकुरी भिंडी वहाँ पर है, तो मैंने कहा कि साहब मैं कुरकुरी भिंडी खाना चाहूंगा। अरे डॉक्टर एक कुरकुरी भिंडी लाओ, उन्होंने कुक को फौरन कहा। कुक अंदर तो गया लेकिन बाहर निकल के आया, उसने हाथ हिला दिया, खत्म हो गई सारी प्लेट अपनी उठा के और मेरे डाल दी। तो मैंने कहा साहब ये तो बड़ा अनफेयर है, मैं फिर किसी दिन खा लूंगा, नहीं अभी लीजिए अभी लीजिए, लेकिन डाल लीजिए सी बात इंसिस्टेंट, नहीं मैंने कुछ तो आप ले लीजिए। तो उन्होंने अपनी प्लेट लगा के उसमें दो चार भिंडी अपनी उसमें ले ली। मुझे ऐसा लगा कि आज तो इन्होंने मुझे वो दर्जा दे दिया कि मैं प्रधानमंत्री का हमने वाला।
एक बार लद्दाख के दौरे में एक दिलचस्प घटना घटी। हुआ यूं कि हाई एल्टीट्यूड बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर माथुर ने लेह में उतरने से पहले इंदिरा गांधी और उनकी टीम को लेसिक्स की एक एक गोली दी। इस गोली का दूसरा प्रभाव यह होता है कि खाने वाले शख्स को बहुत जल्दी जल्दी पेशाब आता है।
वो मैंने किसी की सलाह से औखा सही थी, उन्होंने कहा उतरने से पहले एक एक टैबलेट लेसिक्स सबको खिला देना। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए तो वही हेलीकॉप्टर के अंदर ही कुछ इंतजाम कर दिया कि वो इस्तेमाल कर सके अगर जरूरत पड़े तो। बाकी लोगों को जो मैंने गोली खिलाई तो जैसे ही जहाँ सा हेलीकॉप्टर जमीन पर आया और लोग इस कदर भर चुका था उनका पेशाब और रोक नहीं सका कोई, और बस वो सब एटिकेट वगैरह भूल गए और लोग भागे कूदे कूदे भागते फिर भाई हर एक आदमी एक कॉर्नर तलाश कर रहा है कि भाई जरा चैन तो मिले। उन्होंने बांध पूछा कि यार चक्कर क्या है, क्या क्या सब लोग भाग रहे हैं इधर उधर। जब मैंने उनको बताया तो बड़ी हंसी और मुझसे कह लेंगे नहीं नहीं आपकी कोई शरारत है इसके अंदर।
1974 में जिस दिन भारत अपना परमाणु परीक्षण करने वाला था, डॉक्टर माथुर इंदिरा गांधी को देखने उनके घर पहुंच गए। वो इस बात को गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उनकी पूरी कोशिश थी कि डॉक्टर माथुर जल्द से जल्द उनके घर से विदा हो।
सैटरडे सैटरडे होने के नाते सैटरडे को थोड़ी देर उनके पास जाकर के उनका चेकअप करता था, क्योंकि रोजमर्रा में जो जाता था वो तो हलो हलो होकर खत्म हो जाती थी। मैंने लथुराम जो उनका वैले था, मेरा तरीका यही था कि मैं उसे जाके बताता था कि मैं आ गया, तो वो मुझे ले जाता था। तो मैं आया था उनके दरवाजे में, मैं नॉक किया, वो अंदर चिल्ला बोली आइए, तो मैं अंदर गया तो मैंने कुछ अजीब बात देखी ना, वो तो बिल्कुल तैयार है फॉर्मली क्लैड जैसे अभी बाहर जाने वाली है, कोई नमस्कार मैंने किया उसका भी कुछ जवाब ऐसे ही, तो इधर उधर कभी बैठने को भी नहीं कहा, उसके बाद में कभी इधर जाएं उधर जाएं, कभी कोई अखबार ले लें उसको नीचे रख दें। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि हो क्या रहा है, जो बात कहें उसका कोई जवाब नहीं। तो मुझे बड़ी फिजियटी, तो मुझे ऐसा लगा कि इनको मेरा आना ठीक नहीं लगा। मैंने कहा साहब वो एग्जामिनेशन वगैरह फिर किसी और दिन कर लेंगे, तो कहले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे साहब खाली ये नहीं कि उन्होंने मुझे रोका नहीं, बल्कि दरवाज़ा और खोल दिखा दिया मुझे, ये रास्ता है निकलिए, इन द नेम ऑफ गॉड गो, तो वो ये चाहिए खुदा के वास्ते जाइएगा। मैं चला आया साहब, शाम को साहब मुझे पता चला कि ये इसलिए था कि इतना बड़ा काम उस वक्त हो रहा था जब मैं उनके घर में था कि कहीं भाई ये कुछ सुन न लें, और सुनने के बाद अगर पार्लियामेंट के अलावा और कोई पहले उससे सुन लेता तो खत्म हो जाता।
1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी तो उनके पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं थी, उनका अपना कोई घर नहीं था, आनंद भवन को तो वो राष्ट्र के नाम पहले ही समर्पित कर चुकी थी। उनके एक सहयोगी मोहम्मद यूनुस ने अपना घर 12 विलिंगटन क्रेसेंट उनके लिए खाली कर दिया। उसी दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा गंभीर रूप से बीमार थे और एम्स में भर्ती थे। उन्होंने कहलवाया कि वो इंदिरा गांधी से मिलना चाहते हैं।
कार उनके पास कुछ थी नहीं अपने उस वक्त, तो एक साहब को थे उनके अपनी गाड़ी भेज दिया करते, उनके कोई दोस्त थे। मैं भी बाहर आया और वो भी मेरे पीछे पीछे आ गए दरवाजे पर, और देखते नहीं कि गाड़ी तो कोई भी नहीं है। वो उनके दोस्त की गाड़ी जो आती थी वो कोई 11 बजे करीब आती थी। अब मेरी कार भी कोने में खड़ी हुई थी, तो देख कर कह लेंगे ये किसकी गाड़ी है। मैंने कहा ये मेरी गाड़ी है, तो कह इसमें क्या हो रही है। मैंने कहा सर चलना चाहे तो चलिए, जब मुझे ऐसा लगा कि ये इसमें चलने को तैयार है तो मैं गाड़ी सामने ले आया और मैंने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया उनके बैठने के लिए। मेरे पास फीएच गाड़ी थी उसको छोटी, तो कह लेंगे अरे आपके पास ड्राइवर नहीं है। मैंने कहा नहीं साहब मैं तो खुद ही चलाता हूँ, ड्राइवर मेरे पास नहीं है। आई कांट ट्रीट यू एज अ ड्राइवर। उपचर नहीं साहब, उपचर का साहब वो तो वहाँ खड़ी हो गई सामने की सीट के लिए दूसरी वाली जो होती है। अरे मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन खैर भाई जब आमादा थी तो मैंने कहा बैठ जाइए। भगत दयाल साहब से मिला लिया वहाँ पर इतफाक से, फिराक गोरखपुरी वो भी भर्ती थे और उन्होंने भी कहलवाया कि अगर आ रही हैं तो मुझे भी 2 मिनट बात करनी है। तो मुझे कहने लगे कि फिराक साहब को, मैंने कहा हाँ ज़रूर मिल गया, मैं तो इंतजार करूँ आपको जल्दी तो नहीं। मैं नहीं साहब मुझे कोई जल्दी, खैर वो फिराक साहब नहीं लौटते सब गए। तो देखिए ना क्या एक अजीब वाकया है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर वो सारे डॉक्टर साहब की गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठकर चले जाने और ना कोई सिक्योरिटी है ना कुछ।
डॉक्टर के पी माथुर का राजीव गांधी से भी नज़दीकी वास्ता था। एक बार उनकी कार खराब होने पर राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री होते हुए भी कार के बोनट को खोलकर उसे ठीक किया था।
राजीव गांधी जो थे वो बहुत नेक इंसान थे और वो भी इसी तरह से खुश मिजाज आदमी थे। मुझे थोड़ी सी देर हो गई पहुँचने में, तो वो कहने लगे डॉक व्हाट हैपेंड। मैंने कहा भाई ऐसा हो गया, तो फिर आप आए कैसे। मैंने कहा भाई किसी ने पुश कर दी कार तो मैं आ गया हूँ। अरे डॉक्टर की गाड़ी मंगाओ। वो फौरन से गए, बस वो बॉनेट खोला, कुछ हिलाया धुलाया, उनके समझ में आ गया क्या बात है, बस उन्होंने फिर ठीक कर दिया सारे हाथ पर निकाल लिए। वो जाकर के उन्होंने मट्टी के तेल से केरोसिन ऑयल से हाथ साफ किए। लेकिन इंसानियत तो शराफत उनके अंदर इतनी थी एक तरह से कि भाई इस काम में भी क्या बुराई।
डॉक्टर के पी माथुर की इंदिरा गांधी से आखिरी मुलाकात उनकी मौत से कुछ मिनटों पहले हुई थी।
20 अक्टूबर को भी वो जैसे मैं सुबह 8 बजे उनके पास जाता था, मैं उनको मिलने के लिए गया और कुछ थोड़ी सी बातचीत हुई। शायद उनको उस रोज कुछ, मुझे ऐसा लगा कि शायद इनको जुकाम होने वाला है, तो मैं कुछ दवाई उनको दिया करता था वो उनके लिए मैं रखाया। बाहर 2 मेकअप करने वाले बैठे हुए थे क्योंकि उनका उसी रोज़ और उसी वक्त एक टेलीविज़न इंटरव्यू होने वाला था और एक पीटर उस्टिनोव जो एक बड़ी थिएटर पर्सनैलिटी और बड़े हॉलीवुड के एक्टर थे वो उनका इंटरव्यू करने वाले थे। एक महिला कांता भारती उनका नाम मुझे याद है, और वहाँ पर फिर उनका मेकअप शुरू हो गया और इंदिरा जी अच्छे खासे मूड में थी, तो फौरन से ऑर्डर किया भाई चाय वाय लाओ। उस रोज़ इतफाक की बात ये हुआ, यानी जब उससे पहली रात जब हम आ रहे थे जहाज़ में, तो जहाज़ में मैगजीन वगैरह जो पड़ी रहती है पड़ी हुई, तो एक पता नहीं मुझे याद नहीं न्यूज़ वीक थी या टाइम थी वो मैं पढ़ रहा था उसे बड़े गौर से। वो उनको ख्याल आया सुबह, शायद उन्होंने भी पढ़ा होगा या किसी वजह से, तो कहले आप इसका तो गौर से वो क्या पढ़ रहे थे। तो मुझे भी याद आई मैं साहब वो उसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ ये थी, रोनल्ड रेगन जो हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि वो टीवी इंटरव्यू के लिए मेकअप नहीं करवाते, लेकिन कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि नहीं उनका मेकअप उसी तरह से होता है जैसे पहले होता था, बल्कि अब तो उनके लिपस्टिक भी लगने लगा। तो वो बड़ी इसकी बहुत हंसी।
इंदिरा गांधी से मिलकर डॉक्टर माथुर अपने अस्पताल के लिए निकले ही थे कि इंदिरा के अंगरक्षकों ने उन पर गोली चला दी। जब तक डॉक्टर माथुर एम्स पहुंचते इंदिरा गांधी इस दुनिया से दूर जा चुकी थी। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
आप विवेचना को 8 बजे विश्व भारती में दोबारा सुन सकते हैं। और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा सरकार उन लोगों का पता लगाने में कामयाब होगी जिन्होंने 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में घोटाला किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगान ने कहा है कि यूरोपीय संघ के साथ वीजा रहित आवाजाही के सौदे के लिए तुर्की नहीं बदलेगा अपना आतंक विरोधी कानून। एर्दोगान ने यूरोपीय नेताओं से कहा हम अपने रास्ते आप अपने रास्ते। जर्मनी के कोलोन शहर में एक नए साल की शाम महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में अल्जीरियाई शख्स के खिलाफ अदालत ने आरोपों को खारिज किया। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। घटना चक्र में चर्चा करेंगे। उत्तर कोरिया कर रहा है पार्टी कांग्रेस का सम्मेलन और उज्जैन में तबाही के बाद स्थिति हुई सामान्य। तब तक दीजिए इजाजत।